नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शुक्रवार को कहा कि श्रीलंका में मौजूदा संकट को लेकर वह बहुत अधिक चिंतित हैं। हालांकि उसने उम्मीद जताई कि वर्तमान हालात का कोई समाधान जल्द ही निकलेगा और देश के लिए राहत पैकेज को लेकर वार्ता जल्द से जल्द बहाल हो सकेगी। न्यूज फर्स्ट लंका ने IMF में संचार विभाग के निदेशक गैरी राइस के हवाले से कहा, हमें आशा है कि मौजूदा स्थिति का समाधान निकल आएगा और IMF समर्थित कार्यक्रम के लिए चर्चा बहाल हो सकेगी। श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उसका विदेशी मुद्रा भंडार काफी नीचे चला गया है और इस स्थिति से उभरने के लिए उसे कम से कम $4 अरब की सहायता की आवश्यकता है। श्रीलंका के सार्वजनिक ऋण के आकलन में इसे अवहनीय पाया गया और ऐसे में IMF कार्यक्रम के लिए बोर्ड की मंजूरी की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि बोर्ड से मंजूरी प्राप्त करने के लिए कर्ज वहनीयता को लेकर पर्याप्त आश्वासन की जरूरत होगी। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक संकल्पना पत्र जारी कर मासिक GST भुगतान में किए जाने वाले परिवर्तनों की अनुशंसा की है और इनके बारे में उद्योग जगत से 15 सितंबर तक विचार देने को कहा है। GST संबंधी मामलों में निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था GST परिषद की पिछले महीने हुई बैठक में GSTR 3B या मासिक कर भुगतान फॉर्म में परिवर्तनों को सार्वजनिक करने और उन पर सभी हितधारकों से सुझाव और सलाह मांगने की सिफारिश की गई थी। मंत्रालय ने मासिक GST भुगतान प्रणाली में बदलावों की अनुशंसा करते हुए आम जनता और व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि फॉर्म GSTR 3B में व्यापक बदलावों पर विस्तृत संकल्पना पत्र जारी किया गया है। सभी हितधारकों से 15 सितंबर 2022 तक सुझाव एवं विचार आमंत्रित किए जाते हैं। AMRG एंड एसोसिएट्स में वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने कहा कि प्रस्तावित बदलाव करदाताओं की अनुपालन सुगमता को बढ़ाएंगे और राजस्व क्षति को कम कर प्रशासकों के लिए सहायक होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि भारत की दीर्घकालिक वृद्धि की संभावनाएं सार्वजनिक पूंजीगत व्यय कार्यक्रमों में अंतर्निहित हैं। इंडोनेशिया के बाली में आयोजित वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की तीसरी G20 बैठक में सीतारमण ने ये भी कहा कि जुझारू आर्थिक प्रणालियों के लिए साक्ष्य आधारित नीति निर्माण बेहद जरूरी है। सरकार ने COVID-19 वैश्विक महामारी से प्रभावित आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए पूंजीगत व्यय पर जोर दिया है। ऐसा अनुमान है कि सार्वजनिक खर्च में वृद्धि करने से निजी निवेश जुटेगा। सीतारमण ने 2022-23 में पूंजीगत व्यय 35.4% बढ़ते हुए 7.5 लाख करोड़ रुपए दिया है। पिछले वर्ष ये 5.5 लाख करोड़ रुपए था। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया। वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत की दीर्घकालिक वृद्धि की संभावनाएं सार्वजनिक पूंजीगत व्यय कार्यक्रमों में निहित हैं और जुझारू आर्थिक प्रणाली के लिए साक्ष्य आधारित नीति निर्माण अत्यंत आवश्यक है। निजी क्षेत्र के ऋणदाता यस बैंक ने 48,000 करोड़ रुपए मूल्य के गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को बेचने के इरादे से एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी बनाने के लिए जेसी फ्लायर्स ARC के साथ करार किया है। यस बैंक ने शुक्रवार को शेयर बाजारों की दी गई सूचना में कहा कि उसने बैंक के चिन्हित तनावग्रस्त ऋणों की बिक्री के संबंध में रणनीतिक साझेदारी के लिए JCF ARC LLC और JC फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बैंक ने कहा कि बाद में अपेक्षित शर्तों को पूरा करने के बाद ये करार 15 जुलाई 2022 से प्रभावी हो गया है। इसने कहा, इस समझौते के बाद बैंक ने ये तय किया है कि जेसी फ्लायर्स ARC 48,000 करोड़ रुपए तक के चिन्हित सकल ऋण पोर्टफोलियो की प्रस्तावित बिक्री के लिए आधार बोलीदाता होगा। फेडरल बैंक का वित्त वर्ष 2022-23 की अप्रैल जून तिमाही में शुद्ध लाभ 64% बढ़कर 600.66 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। बैंक ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। निजी क्षेत्र के ऋणदाता बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 की जून तिमाही में 367.29 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। बैंक का इससे पिछले तिमाही में शुद्ध लाभ 540.54 करोड़ रुपए था। फेडरल बैंक ने शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 की अप्रैल जून तिमाही के दौरान इसकी कुल आय बढ़कर 4,81,000.48 करोड़ रुपए हो गई। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में ये 4,003.97 करोड़ रुपए थी। बैंक की सकल गैर निष्पादित संपत्तियां 30 जून 2022 तक घटकर सकल अग्रिम का 2.69% रह गई। जून 2021 के अंत में यह 3.50% थी। मूल्य के संदर्भ में सकल एनपीए या फंसा कर्ज घटकर 4155.33 करोड़ रुपए रह गया। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को कहा कि लगभग सभी राज्यों ने 4 श्रम संहिताओं पर नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है और नए नियमों को उचित समय पर लागू किया जाएगा। ऐसी अटकलें थी कि श्रम संहिताएं जल्द लागू की जा सकती हैं, क्योंकि ज्यादातर राज्यों ने मसौदा नियम बना लिए हैं। यादव ने पीटीआई भाषा से कहा, लगभग सभी राज्यों ने 4 श्रम संहिताओं पर मसौदा नियम तैयार कर लिए हैं। हम इन संहिताओं को उचित समय पर लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ राज्य मसौदा नियमों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान ने 2 संहिताओं पर मसौदा नियम तैयार कर लिए हैं, जबकि 2 पर अभी बाकी हैं। पश्चिम बंगाल में इन्हें अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि मेघालय समेत पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने 4 संहिताओं पर मसौदा नियम तैयार करने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं की है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।